नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को कुछ प्रमुख शेयरों में हुई खरीदारी के दम पर 326.84 अंक की छलांग लगाने में सफल रहा। सेंसेक्स घरेलू निवेशकों से मिले समर्थन से 326.84 अंक बढ़कर 53,234.77 अंक पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स ने 394.06 अंक तक की बढ़त ले ली थी। इस तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी कारोबार के अंत में 83.30 अंक की बढ़त के साथ 15,835.35 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडसइंड बैंक, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड और एसबीआई को खासा फायदा हुआ। हालांकि टीसीएस, टाटा स्टील और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर नुकसान के साथ बंद हुए। एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्की और चीन का शंघाई कंपोजिट बढ़त पर रहे, जबकि दक्षिण कोरिया के कॉस्पी और हांगकांग के हैंगसेंग में नुकसान रहा। नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप परिवेश विकसित करने में गुजरात, मेघालय और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। DPIIT द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तैयार की गई रैंकिंग में ये बात सामने आई। केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना को शीर्ष प्रदर्शन करने वालों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को यहां राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की। कुल 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कवायद में हिस्सा लिया। उन्हें 5 श्रेणियों में स्थान दिया। 1 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, 2 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, 3 नेतृत्वकर्ता, 4 महत्वाकांक्षी नेतृत्वकर्ता और 5 उभरता स्टार्टअप परिवेश। रैंकिंग उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप परिवेश विकसित करने के लिए की गई पहल पर आधारित है। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस कोल इंडिया लिमिटेड के पहले कोयला आयात करने के टेंडर के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है। ये टेंडर बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों की ओर से सरकारी कोयला उत्पादन कंपनी कोल इंडिया ने निकाला था। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मामले से जुड़े लोगों ने बताया है कि अडानी एंटरप्राइजेस ने फ्रेट ऑन रोड के आधार पर 2.416 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति के लिए 4,033 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है। इसके बाद मोहित मिनरल्स ने 4,182 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, जबकि तीसरी सबसे कम बोली चेट्टीनाड लॉजिस्टिक ने 4,222 करोड़ रुपए की लगाई है। बता दें, आयातित कोयला 7 सरकारी और 19 निजी बिजली उत्पादन करने वाले पावर प्लांट को दिया जाएगा। इससे पहले भी अडानी एंटरप्राइजेस जनवरी से जून के बीच सरकारी बिजली उत्पादन कंपनी NTPC से कई कोयला आयात करने के कॉन्ट्रैक्ट जीत चुका है। पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित अडानी एंटरप्राइजेस की कोयला खदान से भारत कोयला आयात किया करता था। खबरें ये भी हैं कि अडानी ग्रुप मंगलवार को खुलने वाली 6 मीट्रिक टन कोयला आयात करने के टेंडर के लिए भी बोली लगा सकता है। सहकारिता क्षेत्र भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही देश के 70 करोड़ गरीबों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को ये बात कही। शाह, जिनके पास गृह मंत्रालय का भी प्रभार है, ने सहकारी समितियों से इन 70 करोड़ लोगों की मदद करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहा। उन्होंने यहाँ 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में गरीबों की भलाई और उन्हें बिजली, रसोई गैस, आवास तथा स्वास्थ्य बीमा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। शाह ने कहा कि ये 70 करोड़ लोग अब बेहतर जीवन की आकांक्षा कर रहे हैं और इसे सिर्फ सहकारी क्षेत्र द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी को खत्म करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद और साम्यवाद शासन के चरम रूप हैं और विकास का सहकारी मॉडल ही देश के लिए सबसे उपयुक्त है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने सोमवार को कहा कि सरकार की विलासिता वाले उत्पादों पर 28% की GST दर को ही कायम रखने की मंशा है, लेकिन वो कर की 3 अन्य श्रेणियों को 2 श्रेणियों में बदलने पर चर्चा करने के लिए तैयार है। बजाज ने यहां उद्योग मंडल एसोचैम के कार्यक्रम में कहा कि जीएसटी की दरों को युक्ति संगत बनाने की जीएसटी परिषद की कवायद कर प्रणाली के 5 साल बाद आत्मावलोकन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि नीति निर्माताओं को कर दरें 15.5% के राजस्व तटस्थ स्तर तक ले जाने की कोई उत्कंठा नहीं है। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग पर उन्होंने कहा कि ईंधन पर लगने वाला कर केंद्र एवं राज्य सरकारों के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा होता है, लिहाजा इसे लेकर कुछ आशंकाएं भी हैं। उन्होंने कहा, हमें इसके लिए कुछ वक्त इंतजार करना होगा। वाहन विनिर्माता निसान मोटर इंडिया ने सोमवार को कहा कि उसने मोहन विल्सन को निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 1 जुलाई से प्रभावी है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि विल्सन निसान मोटर कॉरपोरेशन के प्रीमियम कार ब्रांड इन्फिनिटी के जापान स्थित वैश्विक मुख्यालय में वैश्विक विपणन योजना के प्रमुख थे। वो श्रीराम पद्मनाभन की जगह लेंगे। वो निसान मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक राकेश श्रीवास्तव को रिपोर्ट करेंगे और उनका केंद्र चेन्नई होगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।